आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊँटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक भाइया ने भोम जी भाई और
गौरा बहन रा गणा अनगणा
राम राम गौरा बहन
राम राम भोम जी भाई।
हाँ,
थाने एक सवाल पूछू।
कई भावड़ा हो गया कई गौरा बहन, खेड़ी बाता करो। सवाल तो पावड़ा ने पूछन सारू हुए
भोम जी भाई।
हाँ,
पूछियो कोनी उनसु, पहले ही थे तो गुडाली चालन लाग गया, तो लार लो गाड़ो किया खांचोला।
अरे गवरा बहन, मैं तो थानो अखानो याद रखूं कि बड़ारी ओट टले चोट। अरे मारे साथे तो थे हो तो गाड़े रे तो भार है ही कोनी।
पण बोम जी भाई, मैं तो मन रे मायने बातरो इतो भार ले रही हूं कि इन सरु थे क्यों तो एक जूनो दुओ सुनाए दू सगला ने।
गवरा बहन, इन सरु तो पूछनी बात ही कोनी, ये देखो सगला अडी के
तो सुनाए दू।
हां
तो सुनो, देखो दुओ है, पत्री में कितरी लिखूं, पत्री में कितरी लिखूं, हितरी चित्री बात, इतरी नितरी उपजे, जितरी लिखी न जात।
घबरा बहन, मने लागे हो दुओ जी को है वो सामी बैठा पावणा ने देख सुने।
सोला ना खरी कही बोम जी भाई, थे इशारे रे मायने समझ जाओ नी, इनी सारू तो मैं थाने समझदार क्यों हूँ।
हाँ घबरा बहन, देखो यासु पूछने तो साचा नी, नित नुवी बाता उपजे है। और देखो अब सगड़ा ने बता दूं कि आज पावणा पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर निदेशक डॉक्टर एनवी पाटिल। और आज आपा बाता कराला ऊंटा माय पोषण प्रबंधन रा नुवा तरीका।
तो सगळा पहला यारो स्वागत करो, राम राम करला।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने करा
राम राम
ओम जी भाई और गौरव बहन और सभी ऊंट पालकों को मेरा नमस्कार।
डॉक्टर साहब देखो, ओम जी भाई बात करी है कि आज बाता कर रहा ऊंटा रे मायने पोषण प्रबंधन रा नुवा तरीका। और देखो डॉक्टर साहब, चारागाह में वनस्पतियां री उपलब्धता और गुणवत्ता माय दिनों दिन कमी होण रे कारण ऊंट पालका रा सामे तो देखो सगळा सु मोटी समस्या है पोषण प्रबंधन री। और जिन बात थाकोड़ो ऊंट धर्मशाल कानी देखे है नी, उनी बात ऊंट पालका रा सामी जद कोई समस्या आवे नी, जणे मैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सामी देखा और आप रे कने हुए सदै नुवी जानकारियां। तो देखो आज ऊंटा रे पोषण प्रबंधन सारू भी आप रे कने कोई न कोई नुआ तरीका हुएला। तो सगला सु पहला तो देखो मारे ऊंट पालका ने वेज बता दो कि वे नुआ तरीका है किसा किसा।
गौरव बहन, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब बदलते परिस्थिति में चरागाह में बहुत घास की कमी और पोषण की कमी आने के साथ साथ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि ऊँटों का पोषण बहुत अच्छी तरह से हो सके। और उसके लिए प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है और नए नए तरीके जो अपनाए जा रहे हैं और जो कि ऊँट पालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
ओम जी भाई देखो, पूरा भरोसा हो के पावणा पधारिया, तैयार करने तो नवी नवी जानकारियां होनी ही होनी है। और अपन वास्ते देखो उष्ट पोषण प्रबंधन री कोई चिंता करने री बात को नहीं।
तो मैं डॉक्टर साहब से वही पूछना चाहूँ कि इसका नुआ नुआ तरीका बे किसा है और बे हमारा आम जगह गाँव ढाणी में ठेठ बैठा है बियन किया पतो चाल सके, बे बिरो फायदो किया ले सके।
ऊँट पालक जिस तरह से पहले ऊँटों का पालन करते थे पोषण के लिए जंगलों में भेजते थे, वही जो वनस्पति है अगर वो वहाँ जंगल में नहीं मिल सकती है लेकिन उसको अगर अपने साथ काटते हुए अगर वो घर पे ले जाके ऊँट को बांधते हुए अगर खिला सकते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और ख़ास बात ऊँटों के बारे में ये रही है कि ऊँट जिस जिस परिस्थिति में गया और जो जैसी जैसी ऐसी परिस्थिति बदलती गई, जैसे कि खेती जिस तरह से होती मोट की होती थी लेकिन अब मूंगफली की होने लगी है, तो मूंगफली का चारा, नीम के पत्ते, खेजड़ी के पत्ते, पाला और जाल के पत्ते, फोग, ये सब इकट्ठे करते हुए, और ऐसे भी वनस्पति है कि जो बाकी के जानवर नहीं खाते उनको एक साथ मिला करके ऊँटों का चारा या पूरे पोषण आहार हम संतुलित तरह से बना सकते हैं और ऊँटों को दे सकते हैं।
पर डॉक्टर साहब, जो बारा आप बताया कि पोषण प्रबंधन है, नुआ तरीका है, इन भात आहार बना सका हाँ, पर मारो ऊँट पालक तो गांव गांव ढणी ढणी बैठो है, तो वीर कने ये जानकारियां है, ये सुविधाएं है, ये आहार है, वीर कने क्या मिले?
जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र में पोषण के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था हमने की है कि जिस तरह से पोषण उसकी शारीरिक अवस्था के अनुरूप उसको अगर चाहिए उस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे बढ़ती हुई टोरडिया है या नवजात जो बच्चे हैं या दूध देने वाली जो सांडे हैं या नर ऊँट है, उसके लिए अलग अलग ऊँटों के आहार का प्रबंधन करना सिखाते भी है और उस तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थापन भी हम करते हैं जिससे कि बहुत अच्छी तरह से उनसे उत्पादन भी हो सके, उनका पुनरुत्पादन की शक्ति जो है वो भी ठीक हो सके। और ये सब करते हुए जो प्रशिक्षण की बात है कि जहाँ ऊँट पालक यहाँ आके कौन कौन से वनस्पति, कौन कौन से झाड़ के पत्ते, कौन कौन से आड़ पैदाश जो कि खेती से उनसे मिल सकते हैं, उन के बारे में भी हम बताने की कोशिश करते हैं।
तो देखो बोमजी भाई, कि अपन जो को गांव गांव ढणी ढणी बैठो है नी ऊँट पालक, वीर सारू भी सुविधा है, कोई भी नुवी जानकारी है नी, तो वे अठे आर भी ले सके है और यहाँ एड़ी व्यवस्था है कि वठे जार भी याने प्रशिक्षण देवे है या शिविर लगावे है, जठे वे ऊँट पालक पूग जावे नी तो बने ये जानकारियां मिल सके है।
पूरी पूरी जानकारी देने का प्रयास करें NRCC। और अब डॉक्टर साहब मैं ओ जानना चाहवा कि ऊँटारी उत्पादन क्षमता, दूध उत्पादन में पोषण प्रबंध रहा नुआ तरीका कहीं है और किया और कितना फायदा हो मारे ऊँट पालका ने?
दूध उत्पादन के लिए अगर ऊँट को पाला जाए, जो कि NRCC या राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य बन चुका है, इसमें हमने देखा है कि संपूर्ण आहार पद्धति जिसमें कि पूर्ण तरह से सभी जो चीज़ें उसके दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है उसके आहार में अगर सम्मिलित हो और ऐसा संतुलित आहार अगर हम बना सके, तो उसके लिए कुछ मशीनरी या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सभी प्रकार के जो पदार्थ है जो कि आहार में आवश्यक होते हैं, जैसे कि मैंने बात की है कि जो झाड़ी की पत्ती है, जो घास है, जो मूंगफली का चारा है, ग्वार की जो आड़ पैदाश या फली जो होती है या उसका ग्वार का चारा है, और उसके साथ साथ खल, मिनरल मिक्सचर, विटामिन का भी मिश्रण का प्रमाण, और उसके साथ साथ जो नमक है, इसका अगर अच्छी तरह से समावेश किया जाए तो संपूर्ण आहार की व्यवस्था हो सकती है। और ये आहार बनाना किस तरह से है उसके लिए भी हमने मशीनरी बनाई है। ये अगर मशीनरी से नहीं बनानी हो तो ये एक साथ सम्मिलित करते हुए विशिष्ट प्रोपोर्शन में तो उसको हम जानवर को या ऊँट को दे सकते हैं और उसका पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और डॉक्टर साहब देखो, पोषण की बात करा, संतुलित आहार की बात करा, तो आज जो है वो दुधारू नहीं देवनो चीज है या जो बाहर ढोन वाला ऊँट है वाने भी संतुलित आहार देवनो घणो जरूरी होया करे, दोया ने बराबर देवनो चीज है?
संतुलित आहार सबके लिए बड़े आवश्यक है, चाहे वो काम करने वाला ऊँट हो या बढ़ते हुए टोरडे और टोरडी की बात हो या प्रजनन के लिए तैयार करने वाला ऊँट हो, और दूध के लिए आवश्यक प्रमाण में संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है ही। जो नई बातें जो हम करने की यहाँ पे सोच रहे हैं कि जिसमें अच्छे प्रमाण में ये सभी अगर पदार्थ अगर मिलाए जाए तो इसके ब्लॉक भी बनाए जा सकते हैं कि जिसके ईंटें बनाते हुए वो ऊँटों के पोषण के लिए सामने रखी जाए, और लगभग 10 से 15 किलो जो ऊँट का जो चारा है वो ब्रिक के स्वरूप में या ईंटों के स्वरूप में हम उसको दे सकते हैं, और ऐसे ही ईंटों में जो समाविष्ट जो पदार्थ है इनके हम पेलेट्स बना सकते हैं, और वो पेलेट्स यानी छोटे छोटे गट्टे होते हैं, और गट्टे अगर 10 से 15 किलो अगर हम पुख्त जानवर के लिए जो कि दूध देने वाली सांडे है या जो पुख्त हुआ हुआ अगर नर ऊँट है उसके लिए भी ये आवश्यक काम करता है।
और अब डॉक्टर साहब आप बताओ कि जो एक टोल तो वह जिनने घर में ही चरावा और एक वह जिनने बारे भी चरावा और घर में भी पोषण देवा और एक वह जिकन खाली जंगला में ही चरावा, तो एडे माए इन तीनों रो पोषण प्रबंधन किन भात नुवे तरीके से करा जिनसु याने संतुलित आहार मिल जावे?
संतुलन में जब घास चारे की व्यवस्था अगर जंगलों में बहुत अच्छी है तो अलग तरह से खिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल की परिस्थितियों में ये बन गया है कि पोषण की व्यवस्था जंगलों में बहुत अच्छी तरह से होती नहीं है, और वही बात हम कर रहे हैं कि चार पाँच घंटे भी अगर वो जंगलात में चर के आए और जंगल में चरने के बाद जो अपूरी पोषण व्यवस्था वहाँ पे हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए हम ऐसे ईंटें जो कि यूरिया मोलेसेस और खनिज मिश्रण और जो नमक डाली हुई जो ईंटें हैं वो दे सकते हैं। या कुछ सिर्फ ऐसी बात होती है कि पेट अगर भराई उसकी हो सकती है जंगलात में जाके घास और झाड़ की पत्ती खाते हुए, लेकिन कुछ खनिज मिश्रण की उसमें कमी रहती है। तो सिर्फ खनिज मिश्रण जो कि लगभग 40 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक, छोटा अगर है तो 40 ग्राम रोज देने की ज़रूरत होती है और 80 से 100 ग्राम तक जो दुधारू ऊँटनियाँ हैं या जो पुख्त हुए हुए जो ऊँट है उसके लिए हम खनिज मिश्रण की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये रोज देने की ज़रूरत होती है। और जो जानवर जो कि घर पे खिलाने की बात है, जो जंगलों पे नहीं भेजना है, तो उसके लिए संपूर्ण पोषण की व्यवस्था, संपूर्ण आहार तरीके और जो कि संतुलित तरीके से हो, ये सभी जो जंगलात में मिलने वाले घास या खेती से उत्पन्न जो बाकी की चीज़ें हैं उसको सम्मिलित करते हुए और खनिज मिश्रण और विटामिन की मिश्रण की मात्रा सम्मिलित करते हुए हम पोषण की व्यवस्था पूरी तरह से कर सकते हैं।
तो देखो जूने तरीके रे साथे साथे नुआ तरीका भी ध्यान रखना पड़ेला के पोषण तो पूरो देवनो ही देनो है, संतुलित आहार तो देवनो ही है, चाहे वो जंगल में चर रावे, क्योंकि जंगला रे मायने संतुलित पोषण को नहीं मिलिया करे ऊँटा ने। पर डॉक्टर साहब देखो ऊँटा रे मायने जब जनन हुए, दूध है, प्रजनन है, एडी क्रियाएं शुरू हुए नी, उन भगत मारो पोषण प्रबंधन किन भांत करना चाहिए, इन सारू भी कोई नुआ तरीका है कही? क्योंकि जूना रे साथे देखो नुए तरीका रो समावेश हो जावे नी तो ऊँट पालका ने ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके।
उठ पोषण प्रबंधन की हर शारीरिक अवस्था में अगर बात की जाए तो एक बात जरूरी है कि पोषण व्यवस्था अगर ठीक नहीं हो तो उसके शारीरिक माप के ऊपर हम देख सकते हैं कि पोषण उसका ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ने एक बॉडी कंडीशन स्कोर की बात की थी कि अगर पोषण व्यवस्था अगर कमजोर हो तो उसकी थुई जो कि बढ़ती है वो कम होने लगेगी या उसके शरीर के ऊपर जो फैट या चर्बी होती है वो चर्बी का प्रमाण अगर कम होता है तो उसके ऊपर से हम पहचान सकते हैं कि इसकी पोषण व्यवस्था किस तरह से है। और हर शारीरिक अवस्था में चाहे वो बढ़ते हुए टोरडी और टोरडिया हो या जो गाभन जो दूध देने वाली ऊँटनियाँ हो, उन सब का शारीरिक अवस्था के ऊपर जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो अलग अलग हो सकता है और उसके हिसाब से उसके पोषण व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है। और फिर चाहे उसको संतुलित आहार में बहुत अच्छी तरह से खल का समावेश करना हो या अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का जो आहार है जिसमें कि 9-10% से ज़्यादा भी हम प्रोटीन खिलाने की बात करते हैं या जो एनर्जी की बात है, जो उसको एनर्जी TDN के स्वरूप में मिलती है, कुल 5-6 द्रव्य के हिसाब से जो करती है, तो 60-70% से लेके कुछ हम आहार तैयार कर सकते हैं।
और डॉक्टर साहब देखो अब बात करा वर्धनशील टोरडेरी तो इनरे पोषण प्रबंधन रो कोई नुवो तरीको है कहीं?
वर्धनशील तोरडी तोरडिया जो है वो हमारे भविष्य के बड़े अच्छे जानवर है। अगर तोरडिया की बात करें तो वो अच्छे हमारे दूध देने वाले जानवर साबित होंगे और कुछ नर होंगे तो वो अच्छे ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो अच्छे उत्पादन क्षमता भी उसके माँ की तरफ से जो आती है उसको हम वृद्धिंगत करने की बात करते हैं, तो उनका आहार पोषण बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। और जिसमें हमने देखा है कि अगर संतुलित आहार में कम से कम 12% प्रोटीन की मात्रा हो और जो मैंने एनर्जी की बात कही है वो कम से कम 60% हो, इसका ध्यान ज़रूर रखा जाए। और साथ ही में ये देखा जाए कि इसका वृद्धि का प्रमाण जो बढ़ने का दर है वो लगभग 500 ग्राम रोज के हिसाब से इतना बढ़ना ज़रूरी है। अगर वो उससे कम हो जाता है तो पोषण व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है जिसको सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होगा।
बोम जी भाई कोई भी सवाल पूछ लो, वीरो जवाब हाजिर है डॉक्टर साहब कने, है के नहीं?
बिल्कुल है।
देखो डॉक्टर साहब जिन बात जवाब हाजिर रखे है नी बात, एक चीज तो मैं भी हाजिर रखूंगा। देखो मार कने है पखार,
हाँ।
वो बरियोड़ी है गीत हूँ,
बिल्कुल।
पर अब गीत तो कार्ड नहीं है,
हाँ।
पर मारी दायरों को नहीं काटू
तो
डॉक्टर साहब री दायरों काटू, क्योंकि देखो ये पावना है नी, मने लगे के जो ज्ञान रो भंडार देखो ये बात सु तो भेड़ो वे को नहीं, दिन भर भणाई गुणाई करे जने भेड़ो वे, तो ये ने कई ठकने वगत मिले के नहीं मिले संगीत सुनन रो, तो एक गीतड़ो तो देखो चौपाल में आयोड़ा है नी, ए आपने फायदो देवे तो आपा याने फायदो दिरादा, एक गीतड़ो तो काट ही देऊ,
हां
पण सुनाऊ पावणारी दायरो।
पावणारी दायरो। तो डॉक्टर साहब आप किसो गीतड़ो सुनना चाहो?
फिल्म गुलामी का जो गाना जो
मेरे पीको भवन,
बस
समझ
गयो। ये
गुलामी नाम लेती हूँ तो समझ गयो कोई गीतड़ो सुनना चाहो।
मने लगे थाणी रियानी दाय एक जी सी दिखे के थे जी को बोलियो बाने डॉक्टर साहब हाँ भर दी है। पर कोई बात नहीं है मारी पखाल रामायण ने वो गीतड़ो।
तो भैया आपसे सुनो सा गुलामी फिल्म रो डॉक्टर साहब की दायरो गीतड़ो गौरव बहनी पखाल छो। आभार आप सुनियो डॉक्टर साहब की दायरो गीतड़लो गबरा बेनी पखाल छो।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन वेला आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारे है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र रा निदेशक डॉक्टर एन वी पाटिल। और आज आप बात कर रहा ऊंटा माए पोषण प्रबंध रा नुआ तरीका।
और डॉक्टर साहब देखो आप आयोड़ा हो अठे तो एक सवाल पूछ लू के आपा जी के क्षेत्र रमायने रहवानी बटे देखो कद काल पड़ जावे ठाकुन पड़े तो काल री स्थिति रमायने ऊंट पालक ऊंठा रो पोषण प्रबंधन किण भात करे इन सारू राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कोई नुआ तरीका अपनाया है जिन सु की ऊंट पालक ने भी बगत आसानी हो जावे।
अकाल जो राजस्थान में पड़ता है बहुत बार बहुत वर्षों तक भी कायम रहता है, और उसमें ऊँटों का पालन और खास करके उसके पोषण के बारे में अगर बात की जाए तो पारंपरिक जो स्रोत है जिससे कि ऊँटों का पोषण होता है उसको मिलाते हुए हम उसका आहार का प्रबंधन हम कर सकते हैं। और उसमें जैसे देखा गया है कि जो काम करने वाले ऊँट हैं या टोलों में अगर ऊँट होते हैं तो जो मूंग का चारा है, मोठ का चारा है या ग्वार का जो चारा है, और आजकल हमारे यहाँ जिस तरह से मूंगफली का उत्पादन हो रहा है और मूंगफली के चारे के भी हम संग्रहण करते हुए उनको खिला सकते हैं, ये एक या मिक्स स्वरूप में भी हम उनको चारा दे सकते हैं। और लगभग अकाल की व्यवस्था में कम से कम आपको 10 किलो की ये चारे की व्यवस्था करना जरूरी है। इन परिस्थितियों में अगर दुधारू जानवर हम अगर रख रहे हैं और उससे हम दूध उत्पादन की बात सोच रहे हैं तो खनिज मिश्रण की व्यवस्था हमें करनी बहुत जरूरी है, और जिसमें कि हम कहते हैं कि 80 ग्राम से 100 ग्राम रोज खनिज मिश्रण और नमक इनको देना बहुत आवश्यक होता है। और अगर उसमें प्रोटीन की अगर कमी अगर होती है तो इसमें ऐसे भी व्यवस्था की जा सकती है कि जो चारा है उसके ऊपर हम 1-2% जो यूरिया है उसका घोल वो मिला के इस चारे को अगर अकाल व्यवस्था के स्वरूप इन जानवरों को अगर दिया जाए तो उनका पोषण बहुत अच्छी तरह से हम करने में सक्षम रहेंगे।
और डॉक्टर साहब मैंने एक बात बताऊं कि मैं सुनियो कि एजोला चारा है वो कई पौष्टिक भी है के, और जे इन्हें बनाना चाहो तो क्या बनाई जाए?
अजोला चारा वो इस तरह से बन सकता है कि कुछ अगर पानी की अपने पास व्यवस्था है और थोड़ा सा छोटा सा पॉन्ड अगर हम बना लें तो उस पॉन्ड में हम उसको उगा सकते हैं। ये एक पानी में बढ़ने वाली वनस्पति है।
अच्छा।
और वो वनस्पति अगर आप 10-12 पाउंड अगर बना ले तो रोज लगभग अगर आप 4-5 किलो अगर अजोला का प्रोडक्शन लेते हो तो आधा किलो से 1 किलो वो जो दूध वाली जो ऊटनिया है उसको आप खिला के उसका पोषण की व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। इस अजोला चारे में बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की जो कमी अगर जानवर में हो जाए तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है, उसका प्रजनन की व्यवस्था भी गड़बड़ हो सकती है, या जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनमें वृद्धि का दर थोड़ा सा कम हो सकता है, तो उनके लिए अजोला का चारा बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी व्यवस्था हम पश्चिमी राजस्थान में और पूरे राजस्थान में हम कर सकते हैं कि जिससे अजोला का प्रोडक्शन हम लगभग 1 पाउंड से 4 से 5 किलो उस तरह से ले सकते हैं।
और डॉक्टर साहब देखो एक बात और सुनन में आई ही कि कोई ऐसी तकनीक है जिनके द्वारा पशु आहार ने मन चाहे आकार देर दूध में वांछित तत्व की मात्रा बढ़ाई जा सके जिसको कि मिनखर स्वास्थ्य की वृद्धि रमाने सहायक होया करे, तो कई आप बात साची है? और जो फेर बदल है वो वैज्ञानिक ही कर सके है या प्रशिक्षण लेवन रे बाद में आम ऊंट पालक भी एड़ो पशु आहार बना सके है?
आपने सच बात कही गौरव बहन कि जिस तरह से आजकल हमें दूध चाहिए उस तरह का दूध भी हम पशुओं से ले सकते हैं, और ऐसी व्यवस्था हमने गाय और भैंस और बाकी बकरियों में भी इस तरह से हम करने के हमने अनुसंधान किए हैं। और वही बात हम बात करेंगे कि ऊटनिया अगर उसको मनचाहा चारा और जिसमें हमें जैसा चाहिए वैसा अगर दूध तैयार करना है तो बहुत अच्छी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि एक कहते हैं कि जो फैट जो कि वसा जो हम जानवरों को खिलाते हैं वो अगर दूध में उतर जाए तो उसके लिए बायपास फैट टेक्नोलॉजी करके आहार में आप डाल सकते हो जो कि वसा का प्रमाण बढ़ाने की क्षमता रखता है। वैसे ही आहार में जो प्रोटीन जो उसके पेट में अगर टूट जाता है और वो उसका पोषण ठीक से करता नहीं है तो उसको भी हमने बायपास करते हुए उसके पेट में यानी आंतों में उसका पाचन करवा के उसकी अच्छी गुणवत्ता जो है हम वो टिका सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत अच्छे और प्रयोग है कि जिससे हम जो मन चाहे जैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए मनुष्य की सेहत के लिए जो आवश्यक जो लिनोलिनिक एसिड है ओमेगा 3 एसिड की बात कर रहे हैं कि या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली बात है तो वैसे पदार्थ भी हम सम्मिलित कर सकते हैं जो कि दूध में उतर सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था बाकी जगह जहाँ पे ऊँटों की डेरी ऊँटनियों की डेरी चल रही है जैसे यूएई की देशों में जहाँ पे ऊँटों का बड़े शास्त्रीय तरीके से संगोपन या पोषण होता है वहाँ पे ये व्यवस्था की जा रही है और वैसे प्रयोग हमारे यहाँ भी हम कर रहे हैं।
और डॉक्टर साहब देखो, पोषण री बात करी, नुवे तरीका री बात करी, कई तरीका आप बताया कि ईंटा मिले है या आप अजोला चारे री बात करी है, तो ए जिको चारो है ऊंट पालका ने जिको गांव गांव डाणी डाणी बैठो है, शहरा में भी बैठो है, तो घरे ही बना सके है या माने बाजार में भी सोरी सोरी मिल जावे?
ये घर में भी आप बना सकते हैं, और कुछ है जो कि कंसंट्रेट मिक्सचर की बात है, जो कि चारा घर पे खिला के अगर उसको पोषण अतिरिक्त तरीके से अगर प्रोटीन और एनर्जी की मात्रा आपको भरपूर प्रमाण में या ठीक प्रमाण में देनी है, उसके लिए कंसंट्रेट मिक्सचर भी बाजार में मिलता है जो आप खिला सकते हो। और ये कंसंट्रेट मिक्सचर या संपूर्ण आहार, इसको बनाने की जो तकनीक है वो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र ऊंट पालकों के लिए प्रशिक्षण के रूप में हम देने का कोर्स भी हम यहाँ चलाते हैं। लगभग 4 से 5 दिनों में अगर ऐसे कोर्स के द्वारा ऊंट पालक इसको सीख ले तो अपने घर बैठे जो पोषण की व्यवस्था अपने ऊँटों के लिए, चाहे तोरड़ी हो तोरड़ा हो या जो गाभन ऊँटनियाँ हो, दूध वाली ऊँटनियाँ हो, उसके लिए बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अपने स्तर पे जो स्रोत उनके पास उपलब्ध है उसको लेते हुए आहार की व्यवस्था का वो व्यवस्थापन बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और अब चलते चलते बिड़ा हमारे ऊँट पालक ने कई संदेश देना चाहो, विशेषकर संतुलित आहार और पोषण के बारे में।
संतुलित आहार के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह का ऊँट का पालन हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि भविष्य में ऊँट का पालन एक व्यवसाय के तरफ व्यवसाय लक्षी हो। और जैसे कि बात हमने की है कि ऊँटनियाँ अगर दूध के लिए अगर पालनी है तो उसका पोषण बहुत अच्छी तरह से होना ज़रूरी है। हरे चारे की व्यवस्था हम ऊँट के लिए कभी सोचते नहीं थे, लेकिन हरे चारा देना बहुत आवश्यक है उसके प्रजनन व्यवस्था के लिए, उसका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए या उसका वृद्धि दर कायम रखने के लिए। उसकी व्यवस्था के साथ साथ जो स्रोत जो कि आपके प्रदेश में आपके पास है उसको सम्मिलित करते हुए खनिज मिश्रण, विटामिन का मिश्रण और जो नमक है उसको साथ लेते हुए आप अच्छी तरह से पोषण कर सकते हो। और यूरिया या शीरा उसका उपयोग करते हुए ईंटे बनाना या गट्टे बनाना आप हमारे प्रशिक्षण में सीख सकते हो, और उससे बहुत कम लागत से आप ऊँटों का पोषण करने के हेतु संतुलित आहार आप तैयार कर सकते हो। इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि ऊँट पालन एक बहुत व्यवसायलक्षी ऐसा कार्यक्रम बन सकता है जिसमें कि फायदा ही फायदा आप पा सकते हो,
रोजगार अच्छा साधन उपलब्ध मिल सके।
बोम जी भाई देखो, यारी जानकारी रे लाडू रमाय ने इतना दाना है नी के भेड़ा करण माए वो आधो घंटो तो मने लगे के थोड़ो पड़ जावे, इतना तो मन रे माय ने सवाल हुए अपने हैं। इया लागे के ए पावना पधारिया नी तो जितो पूछ सका हो तो पूछ ला, पण देखो आप कयो है कि जे अपनी मर्जी वे नी तो आपा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जा रिया सु मिल भी सका हाँ, जानकारियां ले सका हाँ, प्रशिक्षण ले सका हाँ, क्योंकि मैं और पावना की तिकताल देखो सीख तो देवनी ही पड़ेला, पर उनसु पहला देखो थाने एक काम करनो पड़ेला,
ठिकानो बताना पड़ेला। तो हाँ भैया लिखो, ठिकानो लिखो जिगा मारे कार्यक्रम से नुआ नुआ जुड़िया है, बस है लिखो सा ऊंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर। और आज देखो चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर निदेशक डॉक्टर एनवी पाटिल, और आज आपा बातचीत करी ऊँटा माय पोषण प्रबंध रा नुआ तरीका। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया माने इति अच्छी बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा।
राम राम सा।
तो सा ओह ऊँटा री बाता कार्यक्रम संयोजक श्री अमित सिंह, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्षदी। अबे आज्ञा दिराव सा, राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
बाता आकाशवाणी बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।